Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Satva Mantra Kalkiyat. Ya Pranin Sambhavati Aditir Devatamayi. Devatamayi Aditi. यह प्राण रूप से प्रकट होती है। गुहाम प्रविश्यति स्थंतिम, और जो गुहा में प्रविष्ट होकर रहती है, या भूते भीर व्यजायता, और भूतों के साथ ही उत्पन्न होती है। निश्चय यही वह तत्व है। इसमें पूर्व में गुहाम प्रविश्य, पूर्व में जो गुहाम प्रविश्य बात कही गई पूर्व मंत्र में, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूते भीर व्यपश्यत, वहां व्यपश्यत था, यहाँ व्यजायत। इस पर भी थोड़ा विचार है, विचार तो बहुत है, पर थोड़ा ऐसी वासना भी है कि पूरा हो जाए यह वल्ली। तो इसमें क्या है, तो कहते हैं कि ये वहां गुहाम हृदय आकाशम है, और यहाँ गुहाम, यहाँ क्या बताया, तो कहा बुद्धि रूपी गुहा है, या भूते भी व्यपश्यत, तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम, ये अदिति यह देवता मई है, ये अदिति, अर्थात यह अदिति, यह अदनाद अदिति एक बात है, और जो अधीन होती है वह अदिति, जिसमें दीनता नहीं है, तो यह सब देवताओं को शक्ति देती है, यह दैन्य नहीं करती है, देवतामयी, अर्थात सब देवता इसकी शक्ति से व्याप्त है। जैसे कि एक मूर्ति होती है, भगवान का विग्रह होता है, श्री विग्रह, तो हम लोग बोलते हैं सुवर्णमयी है, पाषाणमयी है ना, अष्टधातुमयी है, मृणमयी है। तो यहाँ क्या है कि सारे देवता जो हैं, तो वो देवतामयी यह अदिति है, अर्थात सब देवता उसमें हैं, दोनों प्रकार से समझ लेना। अब ये पहले के मंत्र में जो तप आया है, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया, या पूर्वम तपसो जातम, तो मुंडक में भी इसकी स्पष्टता की गई, मुंडक उपनिषद में, तो वहां कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म, कल ये मंत्र उठाया था, सामान्य अर्थ किया था, तो कहा तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम्। तो एक वहां भी एक सृष्टि की एक प्रक्रिया बता दी। एक बड़ी सुंदर बात है वहां कि भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं कि जैसे मुट्ठी में बेर लेकर और फेंक दो, ऐसा दृष्टांत देते, तो कहा कि इसका भी एक क्रम होता है, क्योंकि इसके पीछे चैतन्य है, इसके पीछे ज्ञान है, तो उस क्रम को हमें शांति से, आस्ते से, धीरे से देखना पड़ता है। तो कहा तपसा चीयते ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है वह तपस्या से, तो कल बताया था आलोचनात्मकेन ज्ञानेन, उससे वह चीयते, तो चीयते का अर्थ नहीं लिया था, तो चीयते आनंद से वह उत्फुल्ल हो जाता है, चीयते कुछ फूल जाता है, तब एक अद्वितीय है, वहां दूसरा कोई देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, वहां क्या उसका फूलना है, तो अपनी आनंद स्वरूपता को देखने लगता है तप से, तपसा चीयते। इसलिए सृष्टि का उपादान कारण क्या है, आनंद है, दुख है नहीं, ब्रह्म सच्चित और आनंद है, तो उसे चीयते, अर्थात वह थोड़ा सा उत्फुल्ल हो जाता है, और उस उत्पादयिता का नाम चित दशा है, उसका नाम एक चित दशा है, तो वह फूल जाता है, और चित दशा, इसलिए ब्रह्म को भूत योनि भी बोलते हैं। तो यह तप से यह ब्रह्म थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, फूल जाता है। और ततो अन्नम अभिजायते, तो फिर क्या हुआ, कहा अन्नम, तो अन्नम वहां क्या है, तो कहा अव्याकृत प्रकृति का नाम अन्न है। ये इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अदिति से प्राण हुए, हिरण्य गर्भ हुआ या हिरण्य गर्भ से अदिति, ये प्रश्न उठता है। कल भी ये प्रश्न आगे और उठाएंगे, तो उसके पहले ये समझ लेना चाहिए। तो अदिति समष्टि बुद्धि कहा, अव्याकृत कहा, और उसको महत्तत्व भी कहा, उसको समष्टि प्रज्ञा भी कहा, और प्रज्ञा और प्राण दोनों की बात, और समष्टि प्राण को हिरण्यगर्भ कहा। तो आपका जो व्यष्टि प्राण है वह हम ऐसा समझते हैं कि वह जड़ है, पर वह जड़ नहीं है। वह जड़ है, जब हम विवेक करते हैं प्राणमय कोश का, तो उसे अवश्य अनात्मा और जड़ कहते हैं, लेकिन समष्टि प्राणों के द्वारा वह संचालित है, उसमें से वह शक्ति लेता है। जब आपका कनेक्शन समष्टि प्राण से छूट जाता है, तब लोग क्या बोलते हैं, जिस मनुष्य का, व्यक्ति का, तो बोलते हैं स्थिति गंभीर है। और हम लोग हर कनेक्शन समष्टि के साथ जोड़ के रखते नहीं है। जहां तक एक मैकेनिकल, एक जबरदस्ती से समष्टि से जुड़ना पड़ता है, वहां तक तो हम जुड़ते हैं। अन्नमय कोश अन्न के बिना नहीं रहता, प्राणमय कोश समष्टि वायु के बिना नहीं रहता। अन्नमय कोश हमने कितना खाया, पहाड़ खा गए, अभी तक में कितना खाया, पहाड़ खा गए हैं अन्न का। तो अन्नमय समष्टि से हम अन्न लेते हैं तब जीवित रहता है, प्राणमय समष्टि से वायु लेते हैं तब जीवित रहता है ना। मनोमय में भी हम समष्टि से लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इंट्यूशन हुआ, नहीं इंट्यूशन नहीं, क्या बोलते हैं वो, टेलीपैथी। तो एक दूसरे का मन भी जुड़ा हुआ है, तो टेलीपैथी हो गई थी हमें कि तुम आ रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो वो समष्टि से जुड़ा हुआ है, विज्ञान में भी उस समष्टि बुद्धि से, धियो यो न प्रचोदयात, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से सब जब जुड़ा हुआ है, तो आपका चैतन्य भी उस चैतन्य से पृथक नहीं है। ये बहुत सामान्य गणित है, एक स्थूल मोटा सा गणित है, पर हम लोग इसका उपयोग करते नहीं। गणित पढ़ लेते हैं, जैसे विद्यालय में गणित पढ़ लेते हैं, जीवन में उसका उपयोग नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ वेदांत में हम लोग गणित पढ़ लेते हैं, पर जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो यदि किसी को सांस लेने की तकलीफ हो रही है, आप ऑक्सीजन से उसको सांस दे रहे हैं, तब क्या कहेंगे, स्थिति को अच्छी नहीं मानेंगे, अच्छी नहीं मानते वहां पर, क्योंकि इस समष्टि प्राण से उसका संबंध कट गया। तो वो हिरण्य गर्भ को लेकर ये प्रश्न उठता है कि वह प्राण की उससे, या प्राणेन संभवती, प्राण से उत्पत्ति हुई। और पहले कहा कि हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति हुई, ऐसे दो बात आई हैं। अभी हम लोग पहले इस मंत्र को देख लें, वहां चलते हैं। तो तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, तो अन्नात अन्न क्या है, तो कहा अव्याकृत प्रकृति है। इसको कठिन समझ के मत समझना, ये धीरे धीरे ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, और इसको आप जितना समझते जाएंगे आप उस ज्ञान तक पहुंच पाएंगे, इसलिए तप को ज्ञान कहा। तो अन्न से, और अन्नात अन्नात प्राण, वहां क्या कहा कि अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती, अर्थात जो अव्याकृत प्रकृति है उससे हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति बता दी। ये यहाँ प्रश्न उठा, तो कहा उससे हिरण अन्नात प्राण, तो उससे हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति बता दी। और फिर उससे कहा कि मन, तो मन क्या है, तो कहा कि अहंकार है, समष्टि अहंकार वह है। और फिर उसके बाद में सत्य, सत्य अर्थात पांच भूत, पंच महाभूत, तो पंचभूत की उत्पत्ति हो गई। और फिर लोकाहा अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उससे लोकाहा से आप उनको लेना। और कर्मसु चामृतम, और उसके बाद कर्म की उत्पत्ति हुई। जब लोकों की उत्पत्ति हो गई तो यह लोकों का ताना बाना किससे जुड़ा हुआ है? कर्म से। कर्मसु, और कर्म को क्या कहा? अमृत, अर्थात कर्म की अमर परंपरा चली। इसको काटने के लिए कोई चाहिए, तो ये इस प्रकार ये सृष्टि की परंपरा चली। एक और प्रश्न कल आया था, इसलिए भी समझा रहे हैं कि अदिति जो समष्टि प्रज्ञा करके बताया गया, तो यह जो अदिति बताई गई, तो इस यह समष्टि प्रज्ञा, इसमें उत्पत्ति करने की शक्ति बताई गई, पालन करने की, क्यों देवतामयी है। देवता अर्थात सब अनुग्राहक देवता, विभिन्न शक्तियां जो प्रकृति में सृष्टि में काम कर रही हैं, तो वो बता दिया गया। किंतु क्या इसमें संहार शक्ति भी होती? उत्पत्ति पालन सृष्टि पालन की है तो संहार शक्ति भी होती, तो संहार शक्ति भी इसमें होती, इसलिए ये कर्म की परंपरा चली ये सृष्टि में। क्योंकि क्यों इसको अमर कहा? क्योंकि कोई भी कर्म उसका फल भोगना पड़ता है, वो भोग बिना नष्ट नहीं होता है, है ना? कृतम कर्म शुभाशुभ, तो जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं वो बिना उनका फल भोगे वो नष्ट नहीं होते। तो यह एक परंपरा चली। तो ये कहा भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं कि विश्वम क्रमेण उत्पद्यते, यह विश्व जो है वो क्रम से उत्पन्न होता है, युगपद नहीं, न युगपद। बदर मुष्टि प्रक्षेपवत, जैसे बदर मुष्टि बेर को भर के हम फेंक देते हैं वैसे नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा एक विचार दिया। इसलिए विचार दिया कि आप जब उल्टे क्रम से चलेंगे तो उस अपने स्वरूप ब्रह्म तक पहुंचेंगे, क्रम से प्रक्रिया से चलेंगे। और कहा कि समझ लिया हमने, जैसे कल सुनाया था कि स्वप्न के समान सृष्टि हो गई, लेकिन स्वप्नवत स्वप्नवत बोल के हम कहीं पहुंच नहीं पाते, पहले क्रम से विचार करना पड़ता है। इसलिए यह आचार्य की करुणा कि वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार ये क्रम से सृष्टि, और यहाँ भी विभिन्न युक्तियां विभिन्न क्रम बताए जा रहे हैं कि कैसे ये सृष्टि हुई। तो अदिति कौन है? तो अदिति यहाँ पर कहते हैं अदनाद अतिथि, तो अदिति जो खाती है, और वही क्या है, क्योंकि वहां जब अन्नम अभिजायते तो वही अन्न भी है, वही खाती है और वही अन्न भी है। और जब यहाँ ये कह रहे हैं कि वह खाती है तो ये सबको खा के अर्थात संहार करके भी वह बैठ सकती है। समस्त सृष्टि का जो उत्पन्न हुई है उसके द्वारा उसका संहार करके भी वह बैठ सकती है। अदनाद अदिति, यहाँ भाष्यकार भगवान ने उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से बताई है। तो जो अव्याकृत प्रकृति है तो वह सबको, संसारियों को संसार की के संस्कार लेके, और व्यास की शक्ति अर्थात वह व्यक्त करने की शक्ति रखती है। तो जब व्यक्त करने की यह अवस्था आती है तब उसको अदिति कहते हैं, और जब वह संहार कर लेती है तब वह सबको खा जाती है, सबको अपने अंदर समेट लेती है। तो यहाँ क्या वर्णन है? कहा व्यक्त करने वाली अवस्था का वर्णन है, और जब यह व्यक्त करने की अवस्था आती है तो उससे प्राण की उत्पत्ति हो जाती है अव्याकृत प्रकृति से। और जो प्राण की उत्पत्ति होती है उसी को बोलते हैं हिरण्यगर्भ, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो सृष्टि स्थिति संहार शक्ति की के जो उसमें है, तो इसकी विज्ञान वत्ता से जो इसमें भरी हुई है, जो ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त हुआ उसी को बोलते हैं तपसा। तो वह तपसा चीयते उपचित हुआ। बहुत सुंदर मंत्र है मुंडक का। हमने एक महात्मा सुना था यह मंत्र ऋषिकेश की बालुका में रात्रि के समय बैठ के, तो कहा तपसा चीयते ब्रह्म। बहुत वर्ष पुरानी, अनेकों वर्ष पुरानी बात है, तो हम पहुंचे तो वो जिज्ञासुओं को सुना ही रहे थे, तपसा चीयते ब्रह्म। तो कहा कि यह जो तप से यह वो फूल गया, तो सृष्टि स्थिति और संहार की जो शक्ति है उसकी विज्ञानवत्ता से, अर्थात उसने उसको जाना, आपने अपनी विज्ञान शक्ति को जाना और आपने सृष्टि कर दी। देखना, आप जब सोकर जागते हैं तो आपकी जो विज्ञान शक्ति होती है उससे ये सृष्टि हो जाती है। तो वह ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त हुआ, जिसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, उसमें वृद्धि की प्राप्ति क्या होगा होगी। तो वह उपचित अर्थात उससे अधिष्ठित है। तो ये जो प्राण है, हिरण्यगर्भ है, तो इसमें ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इसके द्वारा अधिष्ठित है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इससे अधिष्ठित है। अब ये अदिति शब्द की जब यास्क महर्षि ने इसकी व्युत्पत्ति बताई तो उन्होंने इस पर विचार किया, तो उन्होंने कहा कि अदिति दक्षः और दक्षाद उ अदिति। तो अदिति से दक्ष हुआ और दक्षाद अदिति, दक्ष से अदिति हुआ। तो प्रश्न उठाया कि कथम विरुद्धम अस्मिन् उच्यते। तो कहा कि ये कथम विरुद्धम इदम्, यहाँ पर इस प्रकार से विरुद्ध क्यों कहा जा रहा। तो हिरण्यगर्भ से अदिति की अदिति से हिरण्यगर्भ, ये प्रश्न है, ये प्रश्न उठ जाता है, कौन किसका बेटा है। जैसे कि पुराणों में भी अद्भुत अद्भुत कथाएं आती हैं, तो गणेश जी कौन है, तो कहा उमा सुतम, वो पार्वती के पुत्र है। तो शंकर के भी पुत्र हैं, लेकिन विशेष रूप से उमा के पुत्र हैं, उमा, ये अदिति समझो, ये बुद्धि प्रज्ञा समष्टि प्रज्ञा। तो कहा विशेष रूप से कहा उमा के पुत्र हैं। अब जब गणेश पुराण का प्रतिपादन होगा तो गणेश से शंकर की उत्पत्ति बताई जाएगी, अर्थात गणेश शंकर के पुत्र हैं, एक बात, और शंकर स्वयं गणेश के पुत्र हैं। तो कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा, ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि आप तो कार्य कारण ऐसे लगा रहे हैं ना, आप अपनी बुद्धि से कार्य कारण पिता का बेटा पुत्र, पिता का बेटा, और उस क्रम से सोचते हैं, और कहीं बता दिया जाए कि पुत्र जो है उससे पिता उत्पन्न हुआ तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वैसे वेदांतों की एक दूसरी शैली है, वो दूसरी बात है, वो वेदांतों में कहते हैं कि बेटा ने पिता को बनाया, क्योंकि यदि बेटा नहीं होगा तो बाप कहां से होगा, उपाधि है ना, वो दूसरी बात है। तो यहां पर क्या है कि जब यह बात कही जाती तो उसका कि कौन किसका बेटा है, तो वहां पर उत्तर दिया गया समान जन्मानो, दोनों का साथ साथ में जन्म होता है। तो यहाँ चैतन्य की प्रधानता से हिरण्यगर्भ और प्रकृति के विकार जड़ तत्व की प्रधानता से ये अदिति को लिया गया, या महत्तत्व को लिया गया। तो जड़ तत्व की प्रधानता से महत्तत्व और चैतन्य की प्रधानता से हम उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कहते हैं कि दोनों साथ साथ हैं, जहाँ हिरण्यगर्भ है वहाँ महत्तत्व है, जहाँ महत्तत्व है वहाँ हिरण्यगर्भ है। यदि महत्तत्व समष्टि प्रज्ञा नहीं है तो हिरण्यगर्भ कैसे, क्योंकि उसको स्वीकृति देकर ही हिरण्यगर्भ वह ब्रह्म वह ईश्वर हिरण्यगर्भ बनता है। समष्टि प्रज्ञा नहीं है तो वह ईश्वर है, और ईश्वर से ये तो आप विश्व तेजस प्राज्ञ, विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इसके विचार में आप जानते ही हैं कि ईश्वर हिरण्यगर्भ जब समष्टि मन बुद्धि को स्वीकार करता है तब वहाँ वह बनता है। तो हिरण्यगर्भ के शरीर का नाम महत्तत्व है और महत्तत्व की आत्मा का नाम हिरण्यगर्भ है, दोनों साथ साथ हैं। तो महत्तत्व की उपाधि से हिरण्यगर्भ जो है तो परमात्मा के साथ महत्तत्व की उपाधि जब जुड़ी तो वहाँ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अभी उपाधि अपने आप आएगी क्या? चैतन्य तो वहाँ भी रहेगा, इसलिए कहा कि उसका जन्म हुआ, महत्तत्व प्रकट हुआ। तो महत्तत्व प्रकट हुआ तब हिरण्यगर्भ बना। तो शरीर में आप अपने शरीर से अपने अनुभव से देखें, ज्यादा वो करने की, क्योंकि जब हिरण्यगर्भ कहते हैं तो आप सोचते हैं कोई बड़ा सारा बाहर कहीं खड़ा होगा और समष्टि बुद्धि वह भी कहीं खड़ी होगी, हम अपने साथ जोड़ते नहीं है। और यह वेदांत विद्या आपकी अनुभूति के साथ जुड़ने की विद्या है, इसलिए सबसे सरल यह ब्रह्म विद्या है। यह दर्शन अत्यंत सरल है क्योंकि अनुभूति को साथ लेकर चलता है। तो शरीर में बुद्धि भी है और शरीर में प्राण भी है, दोनों आपके साथ बुद्धि भी है और प्राण भी है। आप जब हाथ उठाते हैं तो बुद्धि कहती है कि हाथ उठाओ और इसको एक चांटा मारो, कहती है, मतलब कुछ भी, हाथ जोड़ के दूसरा दृष्टांत लो भाई, वो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो वापस ले लेते हैं। तो कहा कि हाथ उठाओ और भगवान को प्रणाम करो, ये आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग शीतल प्रकृति के लोग हैं और उजड्ड गवारों की भाषा इतनी आपको नहीं अच्छी लगेगी। तो बुद्धि भी साथ में जुड़ती है और हाथ में जो प्राण है वह प्राण शक्ति, वह क्रिया शक्ति, वह भी जुड़ती है। तो दोनों मिलकर तब हाथ उठाते हैं, तब आप ये क्रिया करते हैं, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि या प्राणे न संभवती अदितिर देवतामयी, तो प्राण और अदिति दोनों साथ साथ हैं। तो प्राण वो क्रिया शक्ति, हाथ उठाने की शक्ति, और लेकिन वह क्या है? चेतन है, वह हिरण्यगर्भ को दिखाता है। आपकी क्रिया शक्ति एक चेतन शक्ति है, बताओ। और आपने कर्म को जड़ बना दिया, क्यों? क्योंकि बीच में अपने अहंकार को जोड़ दिया, तो इसलिए ये बात बन गई। तो दोनों मिलकर काम करते हैं तब काम होता है। तो काम होता है वो सृष्टि भी ऐसे होगी जब दोनों होंगे। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, तप कैसा है? तो कहा ज्ञानमय है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है। कल एक आपको बात सुनाई थी कि ईश्वर का ज्ञान तीन प्रकार का होता है, सामान्य, विशेष और स्वरूप, तीन प्रकार का होता है। तो विशेष ज्ञान सर्वज्ञ अर्थात सामान्य ज्ञान, और सर्वविद, श्रुति जब कहती है यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, तो सर्वज्ञ जो है वह सामान्य ज्ञान है और सर्वविद विशेष ज्ञान है, अर्थात सब अंतःकरणों में वह बैठ गया। गुहाम प्रविश्य, गुहाम प्रविश्य, गुहाम हृदयाकाशम पूर्व मंत्र में कहा, तो कहा गुहाम प्रविश्य, गुहा में बैठकर वह ज्ञान गुहा में आकर वह ज्ञान बैठ गया। तो सामान्य और विशेष रूप से जानना और ज्ञानमय तप है उसका, यस्य ज्ञानमय तपः, उसका किसका? ब्रह्म का। तपसा चीयते ब्रह्म, उसका ज्ञानमय तप है। तो सर्वज्ञता रूप जो है वह ज्ञान विकार है। सर्वज्ञता, क्योंकि एक सर्व उसमें आ गया, तो सर्वज्ञता रूप वह ज्ञान विकार ही तप है। अब हमारे आपके लिए वह तप है और ईश्वर के लिए वह ज्ञान विकार ही तप है। क्या सुंदर बात है। देखो तो यह जो तपस्या है यह आयास रूप नहीं है, कोई प्रयत्न रूप नहीं है, फावड़ा चलाने रूप नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सहिष्णुता को तप कहा गया, सह लेने को तप कहा गया, क्योंकि उससे वह शक्ति प्रकट होगी जो आपको आत्मोन्मुख कर देगी, जो आपको चैतन्य की ओर उन्मुख कर देगी। तो यह जो सर्वज्ञता रूप जो ज्ञान विकार है यह परमात्मा में हुआ, तो इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। और कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म, तो कार्य ब्रह्म अर्थात हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति हो गई। तो सर्व जब आ गया उसकी दृष्टि में सर्व, तब वही हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होगी, सर्व और ज्ञान। और तप क्या है, तो कहा कि सर्व के संस्कार को गौण करके केवल ज्ञान को शेष रखना, ये तप है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। तो ये यहाँ पर ये जो देवता, ये अदिति और हिरण्यगर्भ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये बात हम लोगों ने आज समझी, ठीक है। फिर कहा कि ये परमात्मा की पहचान क्या है, उसी में से आया। तो कहा समझदारी और कर्म, हाँ? दोनों का जो आश्रय है ये तप है, ये तप है मनुष्य के लिए। कहा समझदारी और कर्म, आपकी बुद्धि में बैठती है समझदारी और कर्म। और समझदारी से जो परहेज करते हैं तो कहते हैं हम एकांत में बैठकर जान लेंगे, सत्संग नहीं करते, और एकांत में बैठ के कुछ विचित्र विचित्र ही नया व्यापार लेकर आते हैं। और फिर जो एकांत में बैठने की उनकी मन शक्ति प्रबल हुई होती है, उसके द्वारा उस मन शक्ति के प्रभाव से, कहो तो दो टूक बोल दे, वो दुनिया को ठगते हैं। अर्थात नए नए पंथ मत निकालते हैं, मनुष्य के विचार को धोखा देते हैं। मनुष्य विचारशील है तो उसके विचार को जगाना यह